यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हर कृष्णा 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 हर हरे हरे रामा राम राम हर हरे हर कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हर कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान नित गौर हरिबोल 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 नित गौर हरिबोल 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस प्रियव्राज कचर सूत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार श्री हरिदास ठाकुर की ताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके
चालू पूरा चालू कर दीजिए ठीक है नहीं ठीक है अभी चलेगा होने दीजिए कोई बात नहीं बच्चे होगा तो बंद कर देगा ठीक है।
हन्यन्ते पशव यत्र निर्दय अजितात्म भी मन्यमाने इमाम देहां अजरा अमृतु नश्वरम। हन्यन्ते पशव यत्र निर्दयी अजितात्म भी मन्यमानैर इमं देहं अजरा मृत्युनश्वरम्। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयी अजितात्म भी मन्यमानैर इमं देहं अजरा अमृत्युनश्वरम्। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयीर अजितात्म भी मन्यमानैर इमं देहं अजरा मृत्युनश्वरम्। माता जी शब्दार्थ हन्यन्ते कई प्रकार से मारे जाते हैं, विशेषतया कसाई खानों में। पशव पशु जानवर चार पैर वाले, यत्र जहां निर्दयी रजोगुण वाले निर्दय व्यक्तियों द्वारा अजितात्म भी अपनी इंद्रियों को वश में न कर पाने वालों द्वारा मन्यमानई सोचते हैं इमाम इस देहाम शरीर को अजरा जो न तो कभी बूढ़ा होगा, यही है ना बूढ़ा होगा ना, न रोगी होगा, अमृत्यु कभी मृत्यु नहीं होगी, नश्वरम नाशवान शरीर को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, या जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। तात्पर्य, जब मानव समाज में रजो तथा तमो गुणों की वृद्धि होती है, तो अनावश्यक आर्थिक विकास होता है, जिसका परिणाम होता है लोगों का मदिरा स्त्रियों तथा जुए में आसक्त होना। तब ये मदोन्मत्त होकर बड़े बड़े कसाई खाने चलाते हैं या फिर पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन पर जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि शरीर को बनाए रखने के लिए चाहे जो भी प्रयास किए जाएं, यह शरीर जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से पीड़ित होता रहेगा। वे मूर्ख एक के बाद एक पाप कर्म करते जाते हैं। दुष्कृति होने के कारण वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम नियंता के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परम नियंता उनकी हर गतिविधियों को देखता रहता है और हर एक को प्रकृति द्वारा निर्मित उपयुक्त शरीर प्रदान करके पुरस्कृत या दंडित करता है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस तरह पापी व्यक्ति विभिन्न शरीरों में स्वतः दंड पाते रहते हैं। इस दंड का मूल कारण यह है कि जब मनुष्य अनावश्यक रीति से धन का संचय करता है तो अधिक पतित हो जाता है और उसे यह ज्ञान नहीं रह जाता है कि उसका धन अगले जन्म अर्थात मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। न साधु मन्ने यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदया सदेह। पशु हत्या वर्जित है किंतु हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खाना पड़ता है। जीवो जीवस्य जीवनम। इसीलिए उसे यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह किस तरह का भोजन करे। इस उपनिषद का आदेश है तेन त्यक्तेन भुंजित। मनुष्यों के लिए जो भी नियत है वही खाना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरीतम अस्नामी प्रेतात्मनः। यदि कोई मुझे भक्ति तथा प्रेम से एक पत्ती एक फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए भक्त कभी ऐसे कोई भी वस्तु नहीं खाता जिसके लिए बेचारे पशुओं के लिए कसाई घर स्थापित करने पड़े। प्रत्युत भगवत भक्त कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तेन त्यक्ते न भुंजी था। कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रदान किया जाए। मनुष्यों के लिए पशु भोजन की संस्तुति कभी नहीं की जाती, प्रत्युत मनुष्य को कृष्ण प्रसाद लेने की संस्तुति की जाती है। यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुचंते सर्व किल विषयी। भगवद गीता में कहा गया यदि प्रसाद खाना प्रारंभ कर दिया जाए तो थोड़े बहुत पाप कर्म करने पर भी मनुष्य पाप कर्मों के फल से छूट जाता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो इस अध्याय के अंतर्गत नल कुबर मणिग्रीव किस तरह से धन पद सौंदर्य और शिक्षा से मदांध हो गए थे, अंधे हो गए थे। चलो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति के अनावश्यक धन आने लगता है और गलत तरीके से अनावश्यक रीति से कोई धन उपार्जन करके अधिक धन संचय कर लेता है तो उसके चलते वो पाप क्रियाओं में लग जाता है, दूत क्रीड़ा, मांसाहार, अवैध संग इत्यादि करने लगता है। ये धन के दोष हैं और वो भी कोई गलत तरीके से धन कमाता है तो उसमें सब दोष आ जाता है, व्यक्ति धन से पाप करने लगता है। गुरु नानक देव कहते हैं कि धन जो परिश्रम से कमाया जाता है उसमें बरकत होता है और उससे व्यक्ति का भक्ति का पोषण होता है। धन से भक्ति का पोषण भी होता है और धन से भक्ति का ह्रास भी होता है। तो धन जो सात्विक वृत्ति से अपने परिश्रम से कमाया जाता है तो उससे व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति होता है और गलत तरीके से जब कोई धन संचय करता है, धन कमाता है। तो एक बार गुरु नानक एक धनी व्यक्ति के घर गए तो उसके यहाँ खाने के लिए रोटी दी गई तो उस रोटी को जब तोड़े तो उससे रक्त की धारा बह गई, रक्त की धारा निकली। और एक गरीब व्यक्ति के पास गए तो उसके रोटी से दूध की धारा निकली, उस रोटी को तोड़े तो दूध की धारा। तो इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को धन कमाना चाहिए लेकिन गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए। एक बार महाविष्णु महाराज मंदिर में घूम रहे थे तो बरझरी प्रभु से मिले तो बरझरी प्रभु ने द्वारका मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख रुपया दिया था। तो उस पर एक उन्होंने एक पद कहा था, वो पद कहे थे कि सहज मिले वो दूध बराबर, मांग दिया तो पानी, स्वाभाविक जो मिल जाए उसको आकाश वृत्ति बोलते हैं, जैसे आकाश से या पेड़ से फल गिर जाता है उठाकर खा लिए, या आकाश वृत्ति माने बिना प्रयास कोई कुछ दे दिया, या स्वाभाविक जो चीजें मिल जाती हैं बिना कोई परिश्रम किए, उसके लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा या पाप नहीं करना पड़ा, स्वाभाविक मिल जाए। तो सहज जो मिलता है वो दूध के बराबर है। जैसे जो आप किसानी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ अलग से झूठ का या पाप का आश्रय लिए बिना अपने प्रारब्ध अपने कर्म के अनुसार जो फल मिलता है उसका स्वाभाविक बोलते हैं, तो वो दूध के बराबर है। अब मांग देने पर नहीं, हमको इतना आपको देना ही पड़ेगा, और भी खींचा तानी अगर होने लगे नहीं आप इतना देंगे तब हम आपके यहाँ कीर्तन करेंगे होता है ना, इतना का आप साटा लिखाइए बहुत जगह साटा लिखाया जाता है, आपको कथा करना है 7 दिवसीय कथा है तो 5 लाख का साटा लोग लिखवाते हैं, उससे कम पर हम नहीं जाएंगे। तो मांग दिया तो पानी, वह है रक्त बराबर जब होए खींचा तानी, एक स्वाभाविक जो मिल जाता है दूध के बराबर है, और मांग दिया तो पानी, और जब ये होने लगे कि नहीं हमको इतना आपको देना ही पड़ेगा, इतना पैसा दीजिए, जब खींचा तानी होने लगे तो रक्त के बराबर है। चलो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में इस पर जोड़ दिए हैं कि मानव समाज में रजोगुण तथा तमोगुण की वृद्धि होती है। जब मानव समाज में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है तो अनावश्यक आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, अनवांटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब ज्यादा लोग राजसी तामसी हो जाते हैं तो अनवांटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जैसे उसके साधन है स्लाउटर खोलना, शराब खाना खोलना, ये सब कार्य करना, कत्ल खाना जगह जगह खुलवाना, हर सिटी में हर गांव में शराब की दुकानें खुलवाना, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता है, आर्थिक विकास होता है, लेकिन इसका परिणाम जो है वो गलत हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनावश्यक रीति से आर्थिक विकास का परिणाम यह होता है, गलत ढंग से धन कमाने का परिणाम यह होता है कि लोग मदिरा, स्त्रियों तथा जुए में आसक्त हो जाते हैं। गलत ढंग से धन कमाने से लोग मदिरा में, मांसाहार में, अन्य पाप क्रियाओं में लोग लग जाते हैं। ये धन गलत रीति से कमाने से इसमें दोष आ जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें गलत तरीके से धन नहीं उपार्जन करना चाहिए, नहीं तो धन व्यक्ति को डुबा देता है। जैसे नाव में पानी बढ़ने लगे तो नाव में सवार लोगों को डुबा देता है। जैसे नाव में कोई यात्री जब चलता है और नाव में होल हो तो पानी भरने लगता है नाव में, तो उसको लोग पानी को बाहर करते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं मायापुर जाते हैं जब नवद्वीप से, तो नाव में कभी कभी पानी तो लोग बाहर निकालते हैं, आप लोग देखे होंगे। अगर पानी को बाहर ना निकाला जाए तो नाव समेत यात्रियों को डुबो देता है। ये हिंदी के कवि ने लिखा है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, आ दो हाथ लीचिए यही सयानो काम। पानी नाव में बढ़ने लगे और घर में धन बढ़ने लगे, तो बुद्धिमानी सयाना वही है जो दोनों हाथ से उसको बाहर करने लगे। दो हाथ लीचिए यही सयानो काम, नहीं तो नाव समेत डुबा देगा। बहुत अच्छा बात है कि पानी नाव में बढ़ने लगे तो चुपचाप खड़ा नहीं रहना चाहिए, उसको बाहर निकालते रहिए, और घर में धन बढ़ने लगे तो दोनों हाथ से दान करना चाहिए, अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। और नहीं, अच्छे कार्य में नहीं लगाएंगे तो गलत कार्य में धन को लगाने की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी, क्योंकि धन का ऐसा स्वभाव ही है कि जहाँ धन अधिक आने लगता है तो व्यक्ति उस धन से थोड़ा गर्वान्वित हो जाता है और गलत कार्य करने लगता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में तो बहुत बल दिए हैं। तब ये मदोन्मत्त होकर बड़े बड़े कसाई खाने चलाते हैं या फिर पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन पर जाते हैं, लोग आखेट करने के लिए जाते हैं जंगल में पशुओं का वध करने के लिए। वे भूल जाते हैं कि शरीर को बनाए रखने के लिए चाहे जो भी प्रयास किए जाए, यह शरीर जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से पीड़ित होता रहेगा। कभी कभी लोग शरीर के लिए अनावश्यक पशुओं का वध करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए या दीर्घायु बनाने के लिए लोग पशुओं का वध करते हैं। हमारे एक चचेरे भाई थे तो उनको कैंसर हो गया था, तो गांव में किसी ने कहा कि आप घोंघा खाइए, एक शंख जैसा ऊपर सेल होता है उसमें जंतु होता है, ऐसे होता है खेती में, धान के खेत में पानी में होता है, उसको हमारे घोंघा बोलते हैं। या सीप होता है ना, सीपी, सीप में भी एक जीव होता है, जैसे शंख में भी जीव होता है। तो किस कहा कि उसको वो घोंघा के अंदर जो जीव होता है उसको मार करके आप खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे जीवों को मार कर खाते थे, लेकिन फिर भी मर गए, बचे नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम ये खा लेंगे, वो जीव को मार कर खा लेंगे तो हम रोग से स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिर भी लोग आर्त में या स्वार्थ में अनेक जीवों का वध करके खाते हैं कि हम ये चीज खा लेंगे तो लंबी आयु हो जाएगी। शरीर जन्म मृत्यु तथा रोग से पीड़ित रहेगा, वे मूर्ख एक के बाद एक पाप कर्म करते जाते हैं। दुष्कृति होने के कारण वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम नियंता के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाते हैं। हर प्राणी में भगवान का निवास है, परमात्मा। परमात्मा हर प्राणियों में है, चाहे वो गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चंडाल हो, पशु पक्षी वृक्ष योनि में भी परमात्मा का निवास होता है। भगवान के ये जो जितने भी देहधारी हैं वो चलते हुए मंदिर हैं। हर जीव भगवान का निवास स्थान है, मंदिर है, चाहे पशु हो, चाहे सरीसृप हो, चाहे वृक्ष योनि, हर जगह भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान हर प्राणी में है, तो हर प्राणी जो है भगवान का निवास स्थान मतलब मंदिर है। शरीरम हरिमंदिरम, हर शरीर भगवान का मंदिर है जिसमें भगवान निवास करते हैं। तो किसी भी प्राणी का वध करना भगवान को भी क्षति पहुंचाना है, परमात्मा को भी। तो किसी भी जीव को मारना महापाप है, इसलिए शास्त्र में कहा गया कि जीव हिंसा महापाप है। महात्मा बुद्ध इसी को प्रचार किए। पशुओं का वध हो रहा था, यज्ञ में पशु बलि करके लोग खाते थे, यज्ञ के नाम पर लोग पशुओं का बलि देकर मांसाहार करते थे। यद्यपि प्राचीन काल में पशुओं को यज्ञ में बलि दिया जाता था तो पशु पुनः नया जीवन प्राप्त कर लेते थे, मंत्र के प्रभाव से पशु का नया जीवन हो जाता था। वृद्ध रुग्ण पशु को यज्ञ में बलि देने का विधान है और उसको पुनः नया जीवन मिल जाता था। इसलिए अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ पहले किए जाते थे। पहले के ब्राह्मण लोग पशु बलि देते थे यज्ञ में, और जब पशु का बलि देते थे तो पशु उसी हवन कुंड से नया जीवन प्राप्त कर लेता था, वृद्ध पशु, बीमार पशु। तो दो कार्य होता था, एक पशु का नया शरीर मिल जाता था, नवजीवन प्राप्त होता था, नया कलेवर मिल जाता था, वृद्ध शरीर से मुक्ति मिल जाती थी, बीमारी से छुटकारा मिल जाता था, और यज्ञ की पूर्णता भी सफल हो जाती थी कि यज्ञ सही रूप में संपन्न हुआ है। इसका भी प्रमाण मिल जाता था कि यज्ञ सही रूप में संपन्न हुआ है जब पशु नया जीवन प्राप्त कर लेता था। तो इस रीति को लोग करते आ रहे थे, और उस यज्ञ के और वेद का आश्रय लेकर के लोग पशुओं का शिकार करके मांसाहार करने लगे। कलियुग में वेद को प्रमाण मान करके या लोक रीति में कि लोक से ऐसा सदियों से हो रहा है, उसको दृष्टांत लोग देते थे कि नहीं वेद में ऐसा वर्णन है पशु बलि का, लेकिन ये भूल जाते थे कि पहले पशुओं को नया जीवन प्रदान किया जाता था, जो भी पशु का बलि होता था उसको फिर नया जीवन मिलता था। तो शास्त्र में कहा गया कि जिस पशु को अगर कोई मारता है तो उसका पुनर्जीवन अगर दे देता है तो ठीक है, हम किसी पशु को या जीव को अगर मारते हैं तो मारने का अर्थ कि उसको नया जीवन देना चाहिए। अगर किसी को हम जीवित नहीं कर सकते हैं तो मार नहीं सकते हैं, मारने का तभी अधिकार है जब हम उसे नया जीवन, उसको जीवन दान देते हैं या जीवित कर दें। तो वेदों में पशु बलि का यही विधान था कि अगर यज्ञ में पशुओं का बलि देना है तो उसको उसी समय नया जीवन प्रदान करना है, नया कलेवर मिल जाता था, नया शरीर मिलता था, तो इसलिए वो पाप नहीं है। वो पाप नहीं हो तो जीव का उद्धार हो गया, उसका नया शरीर मिल गया, बीमारी से मुक्त हो गया। जैसे डॉक्टर किसी को बाईपास सर्जरी करता है, को चीर देता, चीर कर छोड़ दे तो उसको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जब रोगी को चीरता है उसको ठीक कर देता है तो उसको पुरस्कार लोग देते हैं, उसको पैसा देते हैं, बल्कि पहले ही पैसा दे देते हैं। कोई क्लेम नहीं करता है, कोई उसके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज करता है, क्योंकि उसको नया जीवन प्रदान कर रहा है, उसको बीमारी से मुक्त कर रहा है। अगर उसका अनुसरण करके कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति भी उसका पेट चीड़ दे, बोले मैं आपका ऑपरेशन कर दिया हूं नहीं, डॉक्टर के अंदर योग्यता है, ये क्षमता है कि उसके शरीर को चीड़ करके उसके बीमारी को ठीक करके उसको फिर जिंदा कर देता है। ऑपरेशन से पहले लोगों को मार ही दिया जाता है, कोई इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता है कि शरीर को काटने पर ही कोई ये नहीं होता है, उसमें कोई संवेदना नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता है, मतलब मर गया है तो मार करके जीवित कर देना ये ठीक है। इसलिए कलयुग में शास्त्र में इस विधि को मर्जित कर दिया गया कि नहीं, कलयुग में लोग ऐसा जीवन दान नहीं कर सकते हैं तो मार नहीं सकते हैं, इसलिए बलि। इसलिए महात्मा बुद्ध आ करके कहे कि ये पाप है, तब उन्होंने अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म उन्होंने चलाया, अहिंसा परमो धर्म, पशु बलि को उन्होंने रोक दिया। इस तरह पापी व्यक्ति विभिन्न शरीरों में स्वतः दंड पाते रहते हैं। इस दंड का मूल कारण यह है कि जब मनुष्य अनावश्यक रीति से धन का संचय करता है तो अधिक पतित हो जाता है और उसे यह ज्ञान नहीं रह जाता है कि उसका धन अगले जन्म अर्थात मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। न साधु मन्ने यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदया सदेह, पशु हत्या वर्जित है, विशेष करके कलियुग में पशु हत्या वर्जित है, किंतु हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खाना पड़ता है। जीव जीवस्य जीवनम, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खाना है, हर प्राणी का एक प्राणी आहार है, जीव जीव का जीवन है। जैसे घास, पशु गाय घास खाती है, हाथी घोड़ा ये सब घास खाते हैं, वनस्पति पर आधारित हैं, तो वनस्पतियों में भी जीव है, घास के अंदर भी जीवात्मा है, लेकिन पशु के लिए वो आहार है। शेर के लिए मांस जो है आहार है, शेर अगर मांस खाता है किसी पशु को मार करके तो उसके लिए वो पाप नहीं है, उसका वो प्रकृति के द्वारा निर्धारित है कि वो मांस खा सकता है, उसके लिए जंगल के जो पशु हैं जानवर हैं वो आहार हैं, वो प्रकृति ने उसको निर्धारित किया है, उसी तरह मनुष्य के लिए प्रकृति ने फल अन्न दूध साग सब्जी निर्धारित किया है। मनुष्य जो है शाकाहारी प्राणी है, इसके लिए जो आहार निर्धारित है प्रकृति ने, जो ईश्वर ने निर्धारित किया है, वही खाना चाहिए। जैसे शेर है वो मांस खाता है, गाय को मांस देंगे तो नहीं खाएगी, या शेर के आगे घास डालेंगे तो नहीं खाएंगे। प्रकृति का जो नियम है उसको फॉलो कर पालन करते हैं। उसी तरह मनुष्य जब प्रकृति के द्वारा जो उसको निर्धारित है कि ये चीज खाना है, उसका जब अतिक्रमण करता है, नियम की अवहेलना करता है, तो दंडित होता है, उसको प्रकृति के द्वारा दंड मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने निर्धारित आहार से, जैसे हमें जो निर्धारित है कि आपको ये चीज खाना है, उसको छोड़ करके अलग आहार करता है, तो प्रकृति के द्वारा उसको दंड दिया जाता है। जब कोई पशु मारकर खाता है तो उसको अगले जीवन में या वर्तमान में भी दंड दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, कोर्ट के द्वारा उसको जज जो है आज सजा सुनाता है। लेकिन पशु मारने पर भी, पहले वैदिक काल में अगर पशु का भी कोई वध करता था तो आज उसको फांसी दी जाती थी। राजा परीक्षित के, महाराज दशरथ के समय में, राजा रघु के समय में, प्राचीन वैदिक इतिहास में ऐसा वर्णन है कि पशुओं का भी वध करने पर उसको फांसी दी जाती थी। विशेष करके गो हत्या सर्वथा वर्जित था। अगर कोई गो हत्या करता था तो उसको फांसी की सजा दी जाती थी। स्कंद पुराण में महाराज रघु के काल में ऐसा वर्णन है कि उनके राज्य में कहीं पशु हत्या नहीं होता था। विशेषकर गाय की अगर हत्या कोई कर दे अनजाने में भी तो उसको फांसी की सजा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त प्रकृति के द्वारा भी दंड दिया जाता है। जब मनुष्य समाज में अधिक लोग मांसाहारी हो जाते हैं, मांस खाने वाले हो जाते हैं, शराब पीने वाले हो जाते हैं, तो प्रकृति के द्वारा भी दंड दिया जाता है। श्रीमद् भागवतम के 10 श्लोक 4, स्कंध दस अध्याय 4 श्लोक 4 में श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य समाज में जब अधिक लोग व्यभिचारी मांसाहारी शराबी हो जाते हैं तो प्रकृति महामारी के रूप में, बीमारी के रूप में, भूकंप के रूप में, बाढ़ के रूप में अवांछित जनसंख्या को नियंत्रित करती है। जो अनवांटेड पॉपुलेशन है प्रकृति उसको नियंत्रित करती है महामारी के रूप में, बीमारी की, जैसे कोरोना बीमारी है, या बाढ़ आ जाता है, या भूकंप, भूकंप में लाखों लोग मर जाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब बहुत पाप होने लगता है, बहुत मांसाहारी हो जाते हैं, पशुओं को मार कर खाने वाले ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो प्रकृति के माध्यम से ईश्वर जो है उस जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। तो कैसे, तो महामारी के रूप में, जैसे कोरोना महामारी है, या बाढ़ आता है, या भूकंप के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए मनुष्य का आहार है, मनुष्य को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मांस खाने के लिए आदेश नहीं है, शास्त्र में सर्वथा वर्जित है। इसलिए प्रभुपाद जी का श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहित अस्नामी प्रेतात्मना। यदि कोई मुझे भक्ति तथा प्रेम से एक पत्ती फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए भक्त कभी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खाता जिसके लिए बेचारे पशुओं के लिए कसाई घर स्थापित करना पड़े। इसलिए भक्त कभी भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं खाता है। ऐसा नहीं कि अब मैं इतना दिन शाकाहारी था, इतना दिन पालन, अब थोड़ा दिन, बहुत लोग कहते हैं हम इतना साल फलाहारी थे अब हम खाने लगे, बहुत लोग बोलते हैं हम इतना साल अब एकादशी व्रत कर लिए हैं अब एकादशी बैठा देते हैं, कर्मकांडी लोग बोलते हैं आप वृद्ध हो गए हैं अब एकादशी नहीं मत करिए, एकादशी को बैठा दीजिए। हमारे पिताजी भी कह रहे थे कि पंडित जी कह रहे थे कि एकादशी को बैठा दीजिए अब सब कुछ खाइए। तो गांव में ऐसा कर्मकांडी लोग बोलते हैं कि अब शुगर हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, ज्यादा उम्र हो गया है तो एकादशी बैठा देते हैं। लेकिन एकादशी बैठाने का वैष्णव समाज में ऐसा प्रचलन नहीं है, लेकिन कर्मकांड में ब्राह्मण लोग बोलते हैं कर्मकांड में होगा, इसलिए कर्मकांड को विष का भांड कहा गया। कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये भक्ति के विपरीत है। परसों एक भक्त पूछ रहे थे कि हमारे गांव में एक ब्राह्मण कह रहे थे कि कोई मर गया है तो जप नहीं करना चाहिए, कंठी खोल देना चाहिए। तो वो कहे कि क्या करना चाहिए, कोई मर गया है परिवार में तो जप करना चाहिए कि नहीं। मैं कहा कि मर गया तो और अधिक जप करना चाहिए। परीक्षित महाराज मरने वाले तो भागवत का श्रवण किए, मरने वाले हैं या चाहे मर गए हैं तो उस परिस्थिति में और अधिक जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए। तो भगवान का धूप दीप भी दिखा सकते हैं, लेकिन कर्मकांड में ऐसा वर्जन है कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी भी अवस्था में भगवान की सेवा कर सकते हैं। जप तो हमेशा करते हैं, कीर्तनीय सदा हरि, जप करने के लिए देश काल का कोई नियम नहीं, बल्कि कोई मर गया है तो और अधिक उसके लिए भी जप करना चाहिए। भगवान को फल फूल भोग अर्पण कर सकते हैं। प्रत्युत भक्तगण कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तेन त्यक्ते न भुंजी था। कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पत्र पुष्प फल प्रदान किया जाए। किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। मुचंते सर्व किल विषयी, घर में मान लीजिए कोई मर भी गया है तो आप कुछ बन रहा है तो उसमें भी तुलसी पत्र डाल करके ही खाना चाहिए, कम से कम भगवान को मन से अर्पण करके खाना चाहिए। तेन त्यक्ते न भुंजी था, अगर खाना ही है, जीवन धारण करने के लिए कुछ खाना पड़ता है तो भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं किसी भी परिस्थिति में कुछ भी खाना हो तो भोग लगाकर खाना चाहिए, उससे हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि साग सब्जी फल में भी जीव है, वो भी जीव है, तो उसको भी भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। जीव जीवस्य जीवनम। तो यदि प्रसाद खाना प्रारंभ कोई कर देता है तो थोड़े बहुत पाप कर्म करने पर भी मनुष्य पाप कर्मों के फल से छूट जाता है। जैसे हम फल खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं तो भी पाप है, उसमें भी जीव है। से चना को, मूंग को हम पानी में डालते हैं तो अंकुरित हो जाता है, तो उसमें जीवात्मा है। अब पत्थर के टुकड़े को डालेंगे तो अंकुरित नहीं होगा। मूंग को आप पानी में भिंगोते हैं तो दूसरे दिन उसमें अंकुर आ जाते, मतलब उसमें जीव है। चना में भी जीव है, मटर है, उसमें जीव है। तो जीव को खाना पाप है, लेकिन हमारे लिए भगवान ने वो साग फल अन्न निर्धारित किया है, उसको भगवान को अर्पित करके हम खा सकते हैं। अगर बिना अर्पित किए खाते हैं तो पाप खा रहे हैं। इसलिए भगवान को अर्पण करके, शाकाहारी होना ठीक है लेकिन उसको भी भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि प्रसाद खाना प्रारंभ कर दिया जाए तो थोड़े बहुत पाप कर्म करने पर भी मनुष्य पाप कर्मों के फल से छूट जाता है। यदि प्रसाद खाने लगे व्यक्ति अर्पण करके भगवान को, कृष्णार्पण तो दीयम वस्तु गोविंदम तु भीमेव समर्प, भगवान को अर्पण करके खाने लगे तो थोड़े अगर उसमें पाप होता भी है, जैसे काटने में, उसको पकाने में, आग जलाने में भी बहुत जीव मर जाते हैं, झाड़ू लगाने में, मसाला पीसने में, धान कूटने में, उसको धोने में भी जीव हिंसा होता है, जैसे चावल में कृमि होते हैं तो धोने से मर जाते हैं, पकाने से, आग जलाने से भी बहुत सारे जीव मर जाते हैं, झाड़ू लगाने में, चलने में। तो ये जो पाप हैं, ये प्रसाद खाने से, इस पाप से हम बच सकते हैं। हर कार्य में कुछ न कुछ पाप होता है, जैसे झाड़ू लगाते हैं बहुत चींटियां मर जाती हैं, चलते से बहुत जीव पैर में आ जाते हैं, रात में दीपक जलाते हैं बहुत जंतु आकर मर जाते हैं। लोग गांव में लकड़ी में या कंडा में खाना बना, उसमें भी चींटियां रहती हैं, मर जाती हैं। पानी बॉयल करने में, उसमें पानी में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। सब्जी काटने में, मसाला पीसने में, धान कूटने में, कुछ न कुछ जीव हिंसा होता है। इसके पाप से बचने के लिए प्रसाद खाना चाहिए। जो भी अर्पण करके खाएंगे तो ये पाप से हम बच सकते हैं। को पंच सुन कहते हैं। तो हन्यन्ते पशवयत निर्दयी अजितात्म भी मन्यमानेर इमं देहं अजरा मृत्यु नश्वरम। कुछ लोग यह सोचते हैं कि पशु का शरीर में जीव नहीं है, जीवात्मा नहीं है, या पशु को पीड़ा नहीं होता होगा, उसको काटो खाओ। पशु को भी उतना ही पीड़ा होता है जितना हमको पीड़ा होता है। हमारे पांव में कांटा चुभता है तो जितना पीड़ा होता है उसे हम महसूस कर सकते हैं। पशुओं को अगर हम काटते हैं तो उनको कितना पीड़ा होता होगा। पशु को कोई यारा से जब काटता है तो पशु कितने पीड़ा का अनुभव करते होंगे। जितना हमको पीड़ा होता है उतना उनको भी पीड़ा होता है। इसलिए अपने से यह समझना चाहिए कि पशुओं को भी बहुत पीड़ा होता है। इस तरह से हन्यन्ते पशवो, पशुओं को जो लोग मारते हैं निर्दयी, और निर्दयी लोग हैं, उनको दया नहीं है कि ये पशु को कितना पीड़ा का अनुभव होता होगा। मन्यमानर इमं देहं अजरा मृत्यु नश्वरम। इस नश्वर शरीर को अजर अमर बनाने के लिए लोग व्यर्थ पशुओं का वध करके मांस खाते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि एक दिन मरना ही है। हम कितना भी कुछ भी खा लें लेकिन एक दिन बूढ़ा होना ही है। लोग कहते हैं कि भोजपुरी में कहावत है कि गईल जवानी फिर ना आई, कतनो खाइबा घी मलाई। कितना भी घी मलाई खाएंगे कि जो जवानी चली गई वो फिर नहीं आएगी। गईल जवानी फिर ना आई, कतनो खाइबा घी मलाई। कितना भी आप खाइए, कितना भी डॉक्टर के पास दवाई लीजिए, लेकिन बूढ़ा होना ही है। क्षण भंगुर भव राम राम। एक दिन हर चीज जो है क्षण भंगुर है, हर चीज। ये देह भी हमारा एक दिन बूढ़ा होगा ही, हो रहा है, हम पता नहीं है, हमें पता नहीं है। ये जवानी धीरे धीरे जा रही है, ये जवानियां हमार हमरे जिंदगिया में पार हो गई, ये जवानी हमारे सामने देखते देखते चली जाती है, पता नहीं चलता है, एक दिन वृद्धा आ जाती है, वृद्धा अवस्था। कितना भी इसको हम बचाने का प्रयास करेंगे लेकिन शरीर नश्वर है, एक दिन बूढ़ा होगा, एक दिन छूट जाएगा। तो ऐसे नश्वर शरीर के लिए लोग पाप करते हैं, अनावश्यक पशुओं का वध करके अपने शरीर को अजर अमर बनाना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है, एक दिन शरीर छूट जाता है। और शरीर के साथ में जितने भी सामान हैं, जितने भी पैसे हैं, सब छूट जाते हैं। जितना भी हम पाप करके धन संचय करते हैं, वो धन भी छूट जाता है शरीर के साथ ही। जितने भी गगनचुंबी भवन बनाते हैं, सब छूट जाता है शरीर के साथ ही, सारे संबंधी और सारा कमाया हुआ धन सब रह जाता है। इसलिए इस श्लोक में नारद जी कह रहे हैं नल कुबर और मणिग्रीव की, कि ये लोग धन से इतना मदांध हो गए थे, और कि बड़े पुत्र, बड़े धनी के पुत्र हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और अपने ऐश्वर्य से इतने मदांध थे कि उनको भान नहीं हो रहा था कि नारद जी हमारे सामने हैं। नारद जी को देख करके भी वो धृष्टता से उनको ही, उनका मजाक उड़ा रहे थे कि आपका इधर आने का क्या काम है, आप इधर क्यों आए। कभी कभी हम लोग भी कहीं ऐसे जगह पर जाते हैं, लोग बोलते हैं आप महात्मा इधर आने क्या जरूरत है, आपको यहाँ आने क्या जरूरत है। तो नारद जी जब गए तो नल कुबर और मणिग्रीव उनके ऊपर व्यंग कर रहे थे कि आप महात्मा हैं, आपको इधर आने क्या जरूरत है। तो मैं कहा था कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो बोलते हैं ना कभी कभी ऐसे जगह पर जाइए तो बोलते हैं आपका यहाँ क्या काम है, हम लोग यहाँ थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, आप महात्मा हैं यहाँ आपका क्या काम है। तो नारद जी को लोग इस तरह से उपेक्षित, उपहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो नारद जी देखे कि इनको अपने धन का, अपने पद का बहुत हो गया कि हम लोग बहुत धनी हैं, क्या करेंगे, नारद जी हैं तो क्या कर लेंगे हमारा, अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास इतना पैसा है, इतना बड़ा पद है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं। एक बार महाराज लेक्चर में बोल रहे थे कि बोलते हैं मेरा प्राइम मिनिस्टर से है, मेरा बाप एसपी है, डीएम है, आप क्या कर लेंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लोग पद का ये करके लोग किसी का मर्डर कर देते हैं कि हम तो छूट जाएंगे, मेरा तो मंत्री भाई है, हमारा ये है वो है, इतना पैसा है, क्या कर लेंगे लोग। से धन के पद का दुरुपयोग करके लोग अनावश्यक पाप करते हैं, किसी को मारना, किसी को ये करना, कि हम तो बच जाएंगे इससे। तो नारद जी इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि लोग अनावश्यक रीति से धन कमा करके उस धन से अंधे हो जाते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता कि सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नहीं दिखाई पड़ता। से उल्लू को रात में नहीं दिखाई देता है और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है और कौवे को रात में नहीं दिखाई देता है, कौवे को रात में नहीं दिखाई देता है और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है। तो सूरज का दिन में उल्लू को नहीं दिखाई, तो सूरज का क्या दोष है, सूर्य तो प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन धनी व्यक्ति को दिन और रात दोनों में नहीं दिखाई देता है। क्योंकि धन में इतना नशा है कि उस नशे में अंधा हो जाता है। कनक कनक ते सब गुने मादकता अधिकाय, ई खाए बौराई नर ओह पाए बौराय। किसमें ज्यादा नशा है, कनक में कि कनक में? कनक माने धतूरा होता है, कनक माने सोना भी होता है। तो कनक माने धतूरा को खाने के बाद नशा होता है, और एक कनक माने सोने को पा लेने से ही नशा हो जाता है। केवल आपके पास मिल गया तो ही नशा हो जाता है। तो ज्यादा नशा जो है धन में है। धतूरा एक फल है जो बहुत नशीला होता है, तो धतूरे से भी ज्यादा नशा सोना में है। मान लीजिए आपको एक क्विंटल सोना मिल जाए तो आपका पांव जो है धरती पर नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं इसका पांव जमीन पर नहीं पड़ रहा है। ज्यादा धन मिल जाए और कुछ संपत्ति तो व्यक्ति नशा में हो जाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि धतूरे से भी ज्यादा नशा जो है सोना में है, सोने में। कनक, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। श्लिष्ट अलंकार है इसमें। श्लिष्ट अलंकार माने एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसको श्लिष्ट अलंकार कहते हैं। से पानी, पानी माने जल होता है, पानी माने प्रतिष्ठा भी होता है, आ पानी माने चमक भी होता है। रहीम कवि लिखे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। मोती में पानी मतलब चमक, या व्यक्ति में लोग बोलते हैं बहुत पानी वाला आदमी है, बहुत प्रतिष्ठित है। और चूने में पानी मतलब जल, चूना लोग रखते हैं, पान खाने वाले, तंबाकू खाने वाले मिट्टी के बर्तन में चूना रखेंगे, उसमें पानी हमेशा रखेंगे। अगर पानी सूख गया तो चूना मर जाता है। आप लोग देखे ना गांव में चूना को पानी में रखा जाता है, पान में चूना लगाना है या तंबाकू में डाल, तो उसको हमेशा गीला रखना पड़ता है। अगर चूने से पानी खत्म हो गया तो उसका जीवन व्यर्थ है। उसी तरह व्यक्ति में पानी नहीं मतलब प्रतिष्ठा नहीं है तो उसका भी जीवन व्यर्थ है, और मोती में चमक नहीं है तो भी व्यर्थ है। तो यहाँ पानी का तीन अर्थ है श्लिष्ट अलंकार से। पानी मतलब जल, पानी मतलब प्रतिष्ठा, पानी मतलब चमक। मोती मानुष चून, मोती में पानी मतलब चमक से है, मानुष मतलब प्रतिष्ठा, चूना मैंने जल। तो वहां ये कनक, कनक का भी वही है, श्लिष्ट अलंकार से दो अर्थ होता है, धतूरा और सोना भी। तो धन में ज्यादा नशा होता है, इसलिए धन गलत तरीके से अगर कोई कमाता है तो और डुबा देता है उसमें। आदमी के अंदर मांस खाने, शराब पीने, गलत प्रवृत्ति जाग जाती है। भीष्म पितामह जब बाण शैया पर थे तो ज्ञान दे रहे थे, द्रौपदी ने कहा कि जो ज्ञान आप इस समय दे रहे हैं वो भरी सभा में मेरा वस्त्र दुशासन खींच रहा था, उस समय ज्ञान क्यों नहीं दिए, उस समय आप तो मौन ले लिए थे। भीष्म जैसा ज्ञानी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, मौन थे, विरोध करना चाहिए था। तो द्रौपदी ने बाण शैया पर जब भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे थे पांडवों को, तो द्रौपदी ने कहा कि ये ज्ञान आपका उस समय क्यों नहीं प्रकट हुआ, आप कह सकते थे दुर्योधन को, दुशासन को रोक सकते थे, रोक सकते थे। तो कहे कि मैं उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि काम नहीं की, उस समय उचित अनुचित का मैं विचार नहीं कर पाया। विषयी अन्न खैले दुष्ट हिले मन, दुष्ट हिले मन नहीं कृष्ण स्मरण। तो व्यर्थ से अनावश्यक रीति से धन उपार्जन होता है, उससे आदमी का आध्यात्मिक पतन हो जाता है। सश्लोक में है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, हरे कृष्ण। ज्यादा समय हो गया इसलिए प्रश्न नहीं करते हैं।